यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अनुसार यूक्रेन और रशिया की लड़ाई छिड़ने के बाद से लेकर अभी तक 3.5 मिलियन अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। उनमें से बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया भी आ रहे हैं और यहाँ उनको फिर से बसाने की सेवाओं की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। यूक्रेनी समुदाय डोनेशन के द्वारा उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटा है और ऑस्ट्रेलियाई लोग भी इस काम के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। डेल और केली लिम्बनबर्ग 11 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। इन दोनों का यूक्रेन से कोई संबंध नहीं है, मगर वे वहां से आए शरणार्थियों की उसी तरह मदद कर रहे हैं जैसे वे उन्हें जानते हैं।
We've come obviously from South Africa, so when we first arrived, we didn't really know anyone here either. So we kind of know what it feels like to not really have anyone to help, you know, kind of settle in.
डेल और केली ने अपने घर को अनिश्चित काल के लिए डोरोश के परिवार के लिए खोल दिया है। डोरोश का परिवार ओडेसा नगर से भागकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। ओल्गा डोरोश ने कहा,
For us, it's very important to meet people who don't know us, but who make for us all these things with your hearts, with love to Ukraine, to us. It's so amazing, it's so excited, it's wonderful.
अब तक 1500 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई परिवारों ने यूक्रेनियन लोगों को आवास प्रदान किए हैं। आवास के साथ साथ शिक्षा भी नए आगमन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले महीने आइना लियांको कीव में अपने घर से भागकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची थीं। अब वे अपने 8 साल के बेटे की स्कूली शिक्षा ढूंढ रही हैं और यह कार्य केवल स्वयं सेवकों के माध्यम से ही संभव हो सकता है।
Today, my son go to Ukrainian school and he communicate with friends, he find new friends. It's very, very important for him because it only 8 years old.
मगर अभी भी यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए और अधिक सहायता की आवश्यकता है। पहले ही 700 से अधिक लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और यूक्रेनी समुदाय द्वारा आयोजित बैठक और अभिवादन कार्यक्रमों में उनका स्वागत भी किया जा चुका है। न्यू साउथ वेल्स की यूक्रेनी काउंसिल से जुड़े एंड्रयूज मैकेंजी कहते हैं कि ये सभाएं अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद करती हैं। वे कहते हैं,
Here we provide them an opportunity to meet other Ukrainians, to hear Ukrainian being spoken, and to make them realize they're not alone, that Australia stands with Ukraine, and that, you know, together, you know, we will, you know, Ukraine will prevail.
डेल लिबनबर्ग का कहना है कि दया और एकजुटता की भावनाओं ने उन्हें और उनकी पत्नी केली को मदद करने के लिए प्रेरित किया है।
At the end of the day, we're all humans and we're all connected. So, you know, if something's happening, you know, so far away from us, we're all impacted by it in some way. So, yeah, as Kelly mentioned, it's the least that we could do, and you know, if we can do more, we certainly will.
इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसेस भी अब यूक्रेन में मानवीय राहत प्रयासों के साथ जुड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन यूक्रेनी कैटरीना अजारो का परिवार यूक्रेन के लिविव शहर में रहता है, जो पश्चिमी यूक्रेन में पोलिश सीमा के करीब है और रशिया से होने वाले आक्रमणों को झेल रहा है। कहती हैं, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई बेहद चिंताजनक है।
I'm living it personally with the daily phone calls that I have with all the members of my family. My morning starts every day with checking in to see not only if they're okay, but if they're alive. So it's very hard.
कैटरीना बताती हैं कैसे उनके वृद्ध दादा और दादी दोनों बिना भोजन या पानी के और ठंडे तापमान में एक ऊंची इमारत में रहते हैं। वे बताती हैं जब हवाई हमले का अलार्म बजता है तो उनके दादा और दादी निवासी तहखाने में शरण लेते हैं।
It's heart-wrenching because I can't do anything to help them and I know that they're going through the most difficult time in their life. Even though I've offered them to help with visas, to get them across the border, to help find flights and get them all over here, they all said thank you very much, but someone needs to stay and fight. My grandparents were laborers. My grandparents actually had a very difficult life. They met in a labor camp in Kazakhstan, a place that they were sent by the Soviet regime at the time for expressing religious freedom and helping others go to church and attend religious ceremonies. At that time, they were being prosecuted. My grandmother was sent to Kazakhstan, spent 9 years there in a labor camp, and my grandfather spent 3. They obviously went through a lot by being in Kazakhstan, and I feel that being involved in the Ukrainian community here and doing something for Ukraine is helping their legacy live on.
कैटरीना ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ यूक्रेनी संगठनों की सह अध्यक्ष हैं। वे वर्तमान लड़ाई से विस्थापित लोगों का समर्थन करने के लिए विदेश से सहायता बेचकर कड़ी मेहनत कर रही हैं।
Our latest initiative was we received two lists from the Ministry of Defense of medical supplies that are needed through the embassy. We had companies such as Qantas get on board to help us airlift that. We had logistics companies, we had warehousing companies that have also come on board, and just a very quick and unified effort that we managed to put all this together, and the airlift should be happening within the next week or two.
Gilbert & Tobin, an Australian corporate legal firm, है जिसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैम निकलस हैं। वे कहते हैं,
Well, our law firm's donated $100,000 to UNICEF, and we've also opened up to match staff's donations to the same cause. And we're also providing pro bono assistance to the local Ukrainian community in Australia.
मगर ये संघर्ष केवल यूक्रेनियों के लिए मदद और डोनेशन का विषय नहीं है। जो व्यवसाय अभी भी रशिया में अपना काम कर रहे हैं, उन्हें दुनिया भर में रैलियों द्वारा लक्षित किया जा रहा है। हाल ही में सिडनी के चैट्सवुड क्षेत्र में पेप्सी के कार्यालय में एक रैली आयोजित की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के क्रिस हॉली बताते हैं,
The Ukrainian community are calling on Pepsi to stop their trade or their work in Russia and to no longer do business in Russia while they continue their aggression against Ukraine. Where countries are engaging in armed aggression, denying the human rights of people, are killing people in their homes, that it's important for businesses to take an ethical position on that.
SBS News ki is report ko prastut kiya hai Natasha Call ne SBS Hindi ke liye.